सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 19 ओम सिद्धि अचनत्वार्हतो क्षुणा चरणान् श्रमणानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेश्यते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है, जिसमें श्रावकाचार का विस्तार से वर्णन है। 86 पृष्ठ पर अंतिम लाइन हम पढ़ेंगे। पहले तो गुरु की उपासना की बात की थी और कहते हैं गुरु को विनय से उसकी आज्ञा का पालन करना वगैरह वगैरह बात हमने देखी थी। तो कहते हैं गुरु को विनय से अनुरक्त करे, इसको स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अनुरक्त करने की बात यहाँ पहले 45-46 नंबर की गाथा में बताई थी और उसी को यहाँ 47 में स्पष्ट कर रहे हैं। हम देखेंगे, हम पहले ऊपर का श्लोक पढ़ेंगे। पार्श्वे गुरूणां नृपवत् प्रकृत्यभिधिका क्रिया अनिष्टाश्च त्यजेत् सर्वा मनो जातु न दूषये। गुरूणां पार्श्वे नृपवत् यानी राजा की तरह गुरुओं के समीप में अस्वाभाविक तथा शास्त्र निषिद्ध समस्त चेष्टाओं को नहीं करना चाहिए तथा गुरु के मन को कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। अब दुखाने दूषित नहीं करना है, कि उनके कोई विकार उत्पन्न हो जावे या कोई कषाय उत्पन्न हो जावे। विशेषार्थ गुरुओं के सामने थूकना, सोना, ये सब बराबर है क्या? सोना, हाँ वो सोना करना, जम्भाई लेना, शरीर ऐठना, योनी योनी योनी, आप क्या कहते हैं गुजराती में?
बगासा।
देखो ये तो लौकिक में भी हम इसको शिष्टाचार से विरुद्ध मानते हैं। मेडिकल में हमारे एक सर थे, पूरे 200 उसकी क्लास चलती थी। कोई सामने ये जॉन यानी जमाई लेता था तो बाहर निकालते थे, ये ऐसे ऐसे हाथ के अंगूठे के ऐसे ऐसे करना, ये सब जो कहते हैं ना कि लौकिक में भी इसको अच्छा नहीं माना जाता। देखो गुरुओं के सामने थूकना, सोना, जमाई लेना, शरीर ऐठना, ये मराठी में जिसको आरोखी पिरोखे देने ऐसा कहते हैं, जैसे ऐसे कोई ऐसे ऐसे मुड़ना
करना,
स्ट्रेच करना, जिसको ऐठना नहीं स्ट्रेच करते हैं कोई, झूठ बोलना, ठठोली करना, ठठोली समझते हाँ, मस्करी, हंसी मजाक जिसको कहते हैं, हंसना, पैर फैलाना, दोष लगाना, ताल ठोकना, ताली बजाना, विकार करना तथा अंग संस्कार नहीं करना चाहिए। अंग संस्कार नहीं, अंग संस्कार
हाँ।
यानी अंग संस्कार एक ही नहीं, उनके साथ कंघी से बाल बनाना वगैरह वो सब उसी में आ जाएगा अंग संस्कार। ये क्रियाएं अस्वाभाविक कहलाती है। ये तो बड़ों के सामने भी ऐसे नहीं करते थे, ये तो महिराज है, गुरु है। ये पैर फैलाने की बात है ना, अमेरिका में जाते हैं वहां कहां होते तो ऐसे पैर फैला के हाथ करके ऐसे आराम से बैठते थे। वो फिनिक्स में खास देखा था हमने वहां पर भी, तो उनको ये उनको पता नहीं था कि ये शिष्टाचार नहीं है कि जब प्रवचन में बैठते तो इस तरह से नहीं बैठना चाहिए। यानी जैसे आप बैठे तो दोनों पैर फैला के ऐसे आराम से ऐसे बैठते, यानी जैसे हम गप्पे लगाते हैं। वही तो कहते हैं, अभी तो उन्होंने वही बताया। वो देवलाली में आए थे शिविर में, तभी बैठे थे, और यहाँ पर भी कोई आया था।
ये एक्चुअली क्या होता है कि भगवान के प्रति हमारी जरा भी विनयता नहीं रहती। अब ऐसा है कि जब भगवानी चल रही हो, यहाँ तो बहुत बातें बताइए, यहाँ तो पुस्तक नीचे रख देना, ये समझते नहीं कि ये भगवानी
उससे हवा करते हैं। अभी क्या क्या कितने अभिनय करते
हैं।
हाँ, अभी जगह रोकनी है तो कुर्सी पर रख के चले जाते हैं जगह रोकने के लिए।
ऐसे कुर्सी पर रखी गए तो उसकी पुस्तक ही ले गए, उससे भी बारी नहीं।
ये क्या है, अभिनय उनके नहीं होना। यहाँ तो गुरुओं की बात चल रही है, देखो अभी हम देखेंगे आगे।
तार ठोकना वाणी क्या, कब तक आना
अच्छा। फॉर एग्जाम्पल इतने बताया अभी, आप तो शास्त्र निषिद्ध समस्त चेष्टाओं को अभी शास्त्र में क्या क्या बताएंगे, ये तो कॉमन सेंस है कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे अभिनय से अभिनय करनी चाहिए। यानी उनके सामने कैसे बैठेंगे, कैसे खड़े रहेंगे, ऐसे कोई कमर पे हाथ रख के ऐसे थोड़े ही खड़ा रहेगा। पहले कहा था कि पात्रों को संतुष्ट करना चाहिए, अतः दान आदि की विधि को विस्तार से कहते हैं। ये 48 नंबर ऊपर पात्रागम विधि द्रव्य देश कालान अतिक्रमात् दानम देयम गृहस्थेन तपश्चर्यम च शक्तितः। गृहस्थ को पात्र, आगम विधि यानी आगम में बताई हुई विधि। ये आगम और विधि अलग अलग लिखा है, परंतु वो आगम विधि एक शब्द होना चाहिए। द्रव्य देश और काल के अनुसार शक्ति पूर्वक दान देना चाहिए, और शक्ति अनुसार तप करना चाहिए। अर्थात दान देते समय पात्र आदि का ध्यान रखकर तदनुसार ही दान देना चाहिए। यदि उत्तम पात्र है, उत्तम पात्र मुनिराज को कहते हैं, तो उसको आगम के अनुसार नवधा भक्ति पूर्वक ऐसा सात्विक आहार देना चाहिए जो ऋतु के अनुकूल होने के साथ इंद्रिय बलवर्धक और कामोद्दीपक न हो, इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। यानी वो जो आहार में जो वस्तु दी जाती है वो भी एक तो आगम के अनुसार होनी चाहिए, सभी दोष टालकर होनी चाहिए, तो किस पद्धति से देना, कैसे देना, तो जिसको पता ही नहीं मुनिराज कैसे हाथ में ग्रहण करते वगैरह बातें, तो उनके कितने ही रसों का त्याग आदि होता है, तो ये कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बोल के दिया जाता है, ये सब उसकी विधि है। यदि कोई ठंडी के मौसम है और कोई जैसे सर्दी वगैरह हुए, तो आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह जो बनाते हैं, जैसे सूंठ का है, जो अन्य कोई बात है, तो इस तरह से दिए जाते हैं। तो कहते हैं नवधा भक्ति पूर्वक एक महत्व की बात है, और उसकी पूरी शुद्धि की, यानी वो आहार की शुद्धि जिस प्रकार से हो, व्रतियों को जैसा आहार होता है वैसा सब दोष टालकर वहाँ बनाना चाहिए। क्योंकि ये तो
पात्र का क्या, पात्र माने पात्र,
नहीं नहीं नहीं, देखो देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने पूछा। पात्र क्या होता है? दान देने वाले को दाता कहते हैं और उसको स्वीकारने वाले को पात्र कहते हैं। कि दान किसको देना? तो कहते पात्र को देना, योग्य पात्र देखकर दान देना चाहिए।
तो पात्र के बाद अल्प विराम नहीं चाहिए ना?
कहाँ पर
पात्र के बाद अल्पोमा दिया है?
पात्र को भी जानना चाहिए, आगम विधि को भी जानना चाहिए, देश को भी जानना चाहिए, कौमा तो चाहिए, क्योंकि पात्र भी तीन प्रकार के हैं, जो उत्तम है, मध्यम और जघन्य है। जो पात्र नहीं, ऐसे कुपात्र भी होते हैं और कुछ अपात्र भी होते हैं, ये सबकी चर्चा होगी यहाँ पर।
आपको दान देना है, जो दारू पी लिया है उनको पता लग गया उसको पैसा देंगे कि नहीं, वो अपात्र समझे, और आपने पैसा दिया और उसको उनको पता लगे कि पैसा लेने के बाद जुगाड़ खेलते हैं, वो कुपात्र होते हैं। इस तरह से पात्र यानी
योग्य, योग्य
लायक,
लायक। पात्र का एक अर्थ होता है पात्र यानी बर्तन, यहाँ पात्र यानी लेने वाला, और आपका गुजराती पात्रा वो अलग। हाँ नहीं नहीं पूछना, ऐसा मन में कोई संदेह मत रखना।
पात्रता होगा पुष्ट।
देखो दान देने वाले के लिए चार बातें देखना आवश्यक है, एक दाता के गुण, दान में कौन सी वस्तु दी जाती है वो, फिर जिसको दान देना है वो, और चौथी कौन सी बात है, दाता दान में देने वाले पात्र। जैसे हिंसा में चार बातें देखते ना, हिंसा, हिंसक, हिंस्य, और चौथी बात कौन सी होती है मैं भूल गए, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आई थी बात। चलो ठीक है, जब सोचूंगी मैं याद आया तो बताऊंगी। यानी जब दान देते हैं तो दान कौन देता है उसके भी जो गुण है, दाता के गुण, वो भी देखने पड़े। जिसको देना है वो पात्र कहेंगे, वो पहले में पहले पात्र है कि नहीं, हमें दान देना है तो योग्य हम देखें ना, हम थोड़ी जिसको कहेंगे कि योग्य है कि नहीं, देखे कौन संस्था उसका कैसे विनियोग होता है, वो बराबर विनियोग होता है कि नहीं होता है, कि अन्य किसी चीज में उसको जिसको कहेंगे उसके पैसे का हेरा फेरी होती है, ऐसा देखकर हम दान देते हैं तो वो पात्र हुआ। दान किस चीज का दिया जाता है, चार ही बातें हैं ना।
बोलते किसी का बर्थडे है तो तुम जाके उसको चुनके देते, तो आपने दिए हुए जो कोई बख्शीश है तो तुम पैर के नीचे रखते हैं तुम्हारे समझ में, ऐसा बोले उसको ये क्या चीज देनी है उसके ऊपर भी सोच होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था उस समय। ये तो लौकिक की बात है।
ये तो दान चार प्रकार के बोले ना, कौन से चार प्रकार? हाँ आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, ये चार प्रकार के दान होते हैं। तो यहाँ उसमें से ये आहार दान की बात हो रही है, उसमें भी उत्तम पात्र कौन है, तो मुनिराज। सम्यक दृष्टि द्वारा नित्य अवश्य दान देने और तप करने का अवश्य होने वाला फल कहते हैं। 49 नियमेनान्वहं किञ्चित् यच्छतो वा तपस्यतः सन्त्यवश्यं महीयांस परे लोकाजिन श्रितः। परमात्मा की सेवा करने वाला जो भव्य प्रतिदिन नियम पूर्वक शास्त्र विहित, यानी शास्त्र में बताया हुआ कुछ भी दान देता है, शास्त्र में बताया हुआ कुछ भी दान देता है ना, नहीं तो दान अन्य मतियों में तो कुछ कुछ कल्पना होती है और कुछ कुछ दान देते हुए, इसी नहीं, शास्त्र में बताया हुआ और तपस्या करता है उसके परलोक अर्थात आगे के जन्म अवश्य ही महान होते हैं, अर्थात दूसरे जन्म में वह इंद्र आदि के महान पद पाता है। हम तो केवल पैसा देना इसको ही दान समझते हैं, यहाँ तो चार प्रकार की बातें बताई, आहार है, औषधि है, अभयदान है और ज्ञान दान है। आगे जिस हेतु से जो दान करना चाहिए उसे बतलाते हैं। धर्म पात्राण्यनुग्राह्याण्यमुत्र स्वार्थ सिद्धये कार्य पात्राणि चात्रैव कीर्त्रे औचित्यमाचरे। कल्याण के इच्छुक पाक्षिक श्रावक को, पाक्षिक यानी अभी वो उसको पक्ष आ गए, हमने देखा ना समय दृष्टि तो है, परलोक में स्वर्गादि सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए रत्नत्रय की साधना में तत्पर गुरुओं की सेवा आदि करनी चाहिए। देखो ये भाषा ऐसी हमें जो अभी आदत हो गई है अध्यात्म ग्रंथों की, ये अटपटी लगती है ना, क्या लगती है कि सुख संपत्ति करने के लिए क्या ऐसा करना चाहिए क्या, ये चाहिए वाली भाषा चरणानियोग की होती है। तो जो सम्यक दृष्टि है उसके अशुभ वंचनार्थ जो कहेंगे, उसके सच्चे देव गुरु और शास्त्र के प्रति जो अहोभाव है भक्ति भाव है, तो उसके सहज रूप से ऐसे भाव आते हैं। तो यहाँ कहेंगे गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, ऐसे भाषा से डरना या चौंकना मत, हरेक अनियोग की भाषा होती है। प्रथमानियोग में क्या कहेंगे, वो राजा था, वो चक्रवर्ती था, वो सबके त्याग कर दिया, वो मुनि अवस्था धारण की, उसने ऐसा किया, वो तो कथा बतानी है तो भूतकाल में था उसने ऐसा किया वो बताएंगे। द्रव्यानियोग में सिद्धांत बताएंगे, प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता, उसके पर्याय की स्वतंत्रता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। चरणानियोग बताया ऐसा करना चाहिए। कर्णानियोग में तो जीवों के परिणाम और कर्मों की सूक्ष्म बातें बताई जाती, वहां निमित्त का भी कथन होगा। ये चारों अनियोगों का सुमेल ऐसा चाहिए कि द्रव्यानियोग के सिद्धांतों के साथ इसको सबको, यानी उसको ध्यान में रखकर इसका यथार्थ अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए। भाषा बदलने की जरूरत नहीं है, उस भाषा का योग्य अर्थ हमें पता होना चाहिए। और इसी जन्म में पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए अर्थ में सहायक कर्मचारियों का, ये यहां कॉमा लगाना और आगे काम में के बाद कॉमा वो निकाल देना। क्या कहते हैं ये पुरुषार्थ, चार प्रकार के बताए थे याद है कि, और मोक्ष, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो यहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए अर्थ में सहायक कर्मचारियों का, अर्थ ने अभी कोई लौकिक धंधा पानी करते हैं वहां के जो कर्मचारी होगा, वहां जो सहायक है उनका, काम में सहायक पत्नी का उपकार करना चाहिए, उनकी हर तरह से संरक्षा संपोषण करना चाहिए, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी है, उनको बराबर अभी संपोषण यानी अभी कर्मचारियों के लिए अच्छी तरह से उनके धन आदि देना, वो उसमें आ जाएगा। तथा कीर्ति के लिए उचित कार्य करना चाहिए, यानी वो शुभभाव रूप धर्म हो गया, धर्म में तो दोनों आते हैं, मोक्ष का और उसके साथ होने वाले पुण्य। तो कीर्ति के लिए उचित कार्य करना चाहिए अर्थात दान और प्रियवचनों से दूसरों को संतुष्ट करना चाहिए। आगे धर्म पात्रों को उनके गुणों के अनुसार संतुष्ट करने की प्रेरणा करते हैं। 51 नंबर कहाँ लिखा है, बीच में। समयिक साधक समय द्योतक नैष्टिक गणादि पांधिनुयात दानादि नायथोत्तर गुणरागा सद्गृही नित्यम। जैन धर्म के पालक गृहस्थ या मुनि को समयिक कहते हैं। समय शब्द ये जैन दर्शन के लिए समय, देखो ये हम तो समय सार में पढ़ते, स्व समय किसको कहना और पर समय किसको कहना, पर समय का, और स्व में जो स्थित है शुद्धात्मा को जिसने जाना है वो तो स्व समय, ये तो रेगुलर अर्थ हमने समय सार में पढ़ा है। परंतु समय का अर्थ होता है जैन दर्शन, स्व समय ने स्व यानी जैन दर्शन, जैन मत उसको स्व समय का, और जो परमत है अन्य धर्मावलंबी या अन्य दर्शन जो है उसको पर समय कहते हैं। ये भी एक अर्थ है, ये समझना चाहिए। क्योंकि आप धौला में आती थी का नहीं मुझे पता नहीं, उसमें आता था ना समयानुसार, तो हम पूछते थे लोगों को समयानुसार, हाँ समयानुसार का अर्थ क्या होता है, तो चौंकते थे समय के अनुसार इन्हें क्या लेना, या कहीं कहीं स्व समय के अनुसार ऐसा भी शब्द आता था, तो उसका अर्थ है जैन दर्शन के अनुसार। हाँ होता है ना उसके अनेक, वो तो सभी अर्थ समय सार में बताया गया है, समय के बहुत अर्थ है। तो यहाँ समयिक शब्द किसको है, जैन धर्म के पालक गृहस्थ या मुनि को समयिक कहते हैं। ज्योतिष मंत्र आदि लोकोपकारक शास्त्रों के ज्ञाता को साधक कहते हैं, जो शास्त्रार्थ आदि के द्वारा जिन मार्ग की प्रभावना करता है उसे समय द्योतक कहते हैं। समय ने शास्त्र उसके द्योतक, उसका प्रभावना करने वाला, उसको सिखाने वाला, यह उसका प्रचार प्रसार करने वाला, उसको समय द्योतक कहेंगे। जो मूल गुण और उत्तर गुणों से प्रशंसनीय तपन में लीन होता है उसे नैष्ठिक कहते हैं, और धर्माचार्य या उसी के समान गृहस्थाचार्य को गणाधिप कहते हैं। ये अलग अलग शब्दों के अर्थ यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर गाथा में आया था ना समयिक साधक समय द्योतक नैष्ठिक गणाधिपान हिमया, इनमें जो जो उत्कृष्ट हो उनके गुणों में अनुराग से, या जिसके जो उत्कृष्ट गुण हो उनमें अनुराग से पाक्षिक श्रावक को सदा दान सम्मान आसन दान आदि के द्वारा पांचों को संतुष्ट करना चाहिए। अब इसी का अर्थ हम और विशेषार्थ में देखेंगे। उत्तम मध्यम और जघन्य पात्रों को दान देने का कथन तो अनेक शास्त्रों में मिलता है, यह पात्र दान कहलाता है। पात्र का अर्थ क्या है ना, जो दान स्वीकार करता है वो उसको यानी योग्य, दान लेने के योग्य जो है व्यक्ति उसको पात्र कहते हैं। आचार्य जिनसेन जी ने अपने महापुराण में पात्र दान, अभी दान भी अलग प्रकार के बताए, एक तो पात्रों को देना वो पात्र दान, एक होता है दयादान, क्योंकि हम लौकिक अन्य जनों को भी तो देते, वो तो पात्र है नहीं है, किंतु कोई बहुत गरीब है कष्टी है तो उनको भी दया से हम दान देते हैं, तो ये हुआ दयादान। समक्रियादान और अन्वयदान, इसका अर्थ बताएंगे अभी। ये चार भेद करके दान की दिशा को नई गति दी है, उसी का प्रतिफल हम सोमदेव के उपासका अध्ययन में पाते हैं, यानी सोमदेव की जो उपासका अध्ययन है उसमें भी वही बात वहां से ली है, क्योंकि जो कोई नए ग्रंथकार होते हैं वो पुराने ग्रंथों के आधार से उसकी रचना करते हैं। हाँ वर्तमानकालीन परिस्थिति के अनुसार थोड़ा उपदेश में भी अंतर हो सकता है, परंतु मूलभूत बातें तो वही रहती है। उन्हीं का अनुसरण पंडित आशाधर जी ने किया है। सोमदेव जी ने पात्र के पांच भेद किए हैं, समयी, अभी हमने देखा ना समयिक या समयी, साधक साधु आचार्य और समय दीपक यानी शास्त्र पढ़ाने वाले, समय दीपक। गृहस्थ हो या साधु, जो जैन धर्म का अनुयायी है उसे समयी या समयिक कहते हैं। ये साधर्मी पात्र यथाकाल प्राप्त होने पर समय दृष्टियों को उनका आदर करना चाहिए। जिनकी बुद्धि परोक्ष अर्थ को जानने में समर्थ है उन ज्योतिष शास्त्र मंत्र शास्त्र निमित्त शास्त्र के ज्ञाताओं का तथा प्रतिष्ठा शास्त्र के ज्ञाता प्रतिष्ठाचार्यों का भी सम्मान करना चाहिए। ये ज्योतिष है नहीं, वो अन्य मतियों जो ज्योतिष दिखाते हाथ दिखा वो उसकी बात नहीं है। जैन धर्मियों में भी जो अनुष्ठान आदि होते हैं, दीक्षा लेना है, कोई प्रतिष्ठा करना है, तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो शुभ दिन और घड़ी देखी जाती है, उसकी बात है। यहाँ यदि ये न हो तो है ना, ये मंत्र शास्त्र निमित्त शास्त्र इसके भी है, तो मूल में तो द्वादशांग में तो इनका कथन आता है। तो ये न हो तो मुनि दीक्षा, तीर्थ यात्रा, बिंब प्रतिष्ठा यानी पंच कल्याणक वगैरह वगैरह धार्मिक क्रियाएं कैसे हो सकती है? क्योंकि मुहूर्त देखने के लिए ज्योतिर्विदों की, प्रतिष्ठा करने के लिए मंत्र शास्त्र के पंडितों की आवश्यकता होती है। यदि अन्य धर्मावलंबी ज्योतिषों और मंत्रियों को से पूछना पड़े तो अपने धर्म की उन्नति कैसे हो सकती है, तथा अपने मुहूर्त विचार में भी दूसरों से अंतर है। ये मुहूर्त का विचार जो अन्य मति करते हैं, अपने में जैन के जो शास्त्र है उनके अनुसार वो अलग होते हैं। वैवाहिक विधि दूसरे करावे तो उनमें तो श्रद्धा ही नहीं होती। अतः जैन मंत्र शास्त्र, जैन ज्योतिष शास्त्र और जैन क्रियाकांड के ज्ञाताओं का सम्मान करना आवश्यक है। क्रियाकांड यानी जैन की जो विवाह विधि भी अलग होती है अन्यों से, तो क्रियाकांड में अन्य अन्य क्रियाओं में वे जो पद्धतियां होती है उसको ले लेना है, जो उसके जो ज्ञाता है, उसके जो जानकार है उनकी बात। मूल गुण और उत्तर गुणों से युक्त तपस्वी को साधु कहते हैं, उन्हें ही आशाधर जी ने नैष्ठिक कहा है, उन्हें भी भक्ति भाव से पूजना चाहिए। जो ज्ञान कांड और आचार में चतुर्विध संघ के मुखिया होते हैं, ये चतुर्विध संघ क्या होता है? मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इसको चतुर्विध यानी चार प्रकार संघ के, तथा संसार समुद्र से पार उतारने में समर्थ है, उन्हें आचार्य या गणाधिप कहते हैं। गण यानी मुनियों का जो समूह है उसको गण कहेंगे, उसके मुख्य। उनकी देव के समान आराधना करनी चाहिए। मुनियों को भी अष्टद्रव्य से पूजन की जाती है। जो लोकज्ञता, कवित्व आदि के द्वारा और शास्त्रार्थ तथा वक्तृत्व कौशल द्वारा जैन धर्म की प्रभावना करने में तत्पर रहते हैं, उन्हें समय दीपक या समय द्योतक कहते हैं। उनका भी समादर करना कर्तव्य है, यानी आदर करना, योग्य आदर करना। इन पांच दानों में से श्रमण और श्रावक मुमुक्षुओं को रत्नत्रय की भावना से जो दान दिया जाता है वह तो पात्र दत्ती है, दत्ती यानी दान, पात्र को दिया हुआ दान, तथा क्षुधा पीड़ित गृहस्थों को वात्सल्य भाव से जो यथा योग्य दिया जाता है वह समदत्ती है। वैसे दया गृहस्थों को, अच्छा अपने समान को, यह विभाग कर लेना चाहिए। आगे समदत्ती का उपदेश करते हैं, ये 52 नंबर पढ़ेंगे। स्फुरत्येकोऽपि जैनत्व गुणो यत्र सताम मतः तत्राप्य जैनैः सत्पात्रैः द्योत्यं खद्योतवत्रवौ। जिसमें साधुजनों को इष्ट एक भी जैनत्व गुण चमकता है उसके सामने सत्पात्र भी अजैन सूर्य के सामने जुगनू की तरह प्रतीत होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? यानी अजैन होकर जो सत्पात्र है, भला है, वो योग्य नहीं है, तो जो जैन है वो योग्य पात्र है, ये कहना चाहते हैं। देखो इसका विशेषार्थ कहेंगे, जिनेन्द्र भगवान मेरे आराध्य देव है, क्योंकि संसार समुद्र से पार लगाते हैं, इस प्रकार के अभिप्राय को यहाँ जैनत्व गुण कहा है। यानी जिनेन्द्र भगवान को ही मानने वाले अन्य को नहीं मानने, मानने वाले कैसे, वो संसार से पार लगाने वाले, ऐसी दृढ़ उनकी श्रद्धा मान्यता। उसके साथ में ज्ञान और तप न होने से उसे एक कहा है। कहा न, एक भी जैनत्व गुण चमकता है, यानी उसके तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं और तप भी नहीं है, फिर भी जिनेन्द्र भगवान ही, उन्हीं के द्वारा ये संसार सागर पार किया जाता है, इसे दृढ़ श्रद्धा, बस यही नियम है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू निष्प्रभ हो जाते हैं, उसी तरह जिसमें एक भी जैनत्व गुण भासमान है, उस व्यक्ति के सामने मिथ्या ज्ञान और मिथ्या तप से युक्त मिथ्या दृष्टि धार्मिक प्रभाहीन हो जाते हैं। यानी अन्य मतियों के बहुत बहुत बड़े उनके धार्मिक हो गए, उनके प्रमुख हो गए, उनके कोई ऋषि मुनि हो गए, अन्य मतियों के, वो भी ये सामान्य समय दृष्टि के सामने वो कुछ नहीं। आगे जैन पर अनुग्रह करने का महत्व बतलाते हैं। 53 नंबर। वरमे कोप्युपकृतो जैनो नान्ये सहस्रशः दलादि सिद्धान कोन्वेति रस सिद्धे प्रसेदुषी। एक भी जैन का उपकार करना श्रेष्ठ है, हजारों भी अजैनों को उपकृत करना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि पारे से गरीबी रोग बुढ़ापा आदि को दूर कर सकने की शक्ति से युक्त पुरुष के प्रसन्न होने पर बनावटी स्वर्ण आदि को बनाने में प्रसिद्ध पुरुष को कौन पसंद करता है। पारा समझते हैं, मर्क्यूरी। पहले तो मर्क्यूरी से बहुत सारे रसायन विद्या वो सब सारे बनते थे, तो उससे तो क्या क्या, गरीबी दूर करना, रोग बुढ़ा दूर करना, बुढ़ापा भी दूर करने की शक्ति थी। तो कहते उसके सामने वो बनावटी आदि अन्य जो कुछ छोटी मोटी बातें बनाने वाले, औषधि बनाने वाले, उससे क्या सामर्थ्य, कुछ नहीं है, ये बताना चाहते। विशेषता, यह कथन धार्मिकता को दृष्टि में रखकर किया गया। यानी दया दान में या अन्य दान में अन्य को नहीं देना, ये बात नहीं बता रहे, धार्मिक की दृष्टि से बता रहे। जैन धर्म प्रकारांतर से आत्मधर्म ही है। जैन वही है जो आत्मा के निकट है। यानी यहाँ जैन है नहीं, केवल वो तो जैन कुल में जन्मा इसलिए वो जैन है और अब उसके अलावा किसी को नहीं देना, ये बात नहीं बता रहे हैं। उसका उपकार करने से आत्मधर्म को बल मिलता है और अनात्म धर्म का परिहार होता है। आत्मा से भिन्न पदार्थों में आसक्ति ही अनात्म धर्म है, उसको बल नहीं देना धार्मिक का कर्तव्य है। अब जन्म से जैन है और जिनेन्द्र भगवान को ही नहीं मानता है, तो कहते उसको जैन भी नहीं कहेंगे, ये बात यहां बताना। आगे नाम आदि निक्षेप से चार प्रकार के जैनों में उत्तरोत्तर विशेष पात्रता बताते। ये नाम आदि निक्षेप क्या है प्रेरणा बेन?
नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप।
आपने सुना है कभी निक्षेप का नाम? पहले हमने स्थापना की बात की थी ना एक बार। देखो, निक्षेप यानी रखना, वस्तु में रखना, क्या रखना, किसी, हाँ, उसका कोई नाम रखना, तो उसको मैं ये नाम निक्षेप से वस्तु, किसी भी वस्तु में हमने कुछ भी नाम, हमारे बच्चों को हम कोई भी नाम रख सकते हैं, तो यह है नाम निक्षेप। हाँ, अरविंद का अर्थ क्या होता है बोलो भाई? हाँ, तो हम अपने बच्चे का नाम रखेंगे, उसमें तो कोई दोष नहीं है। स्थापना निक्षेप किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की स्थापना यानी कल्पना करना, संकल्प करना। जैसे हम चित्र है और ये हमारे शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज है क्या? वो तो पेपर पर कागज स्याही से कुछ बनाए है हमने, रेखाएं, तो उसको क्या कहना, ये हमारे शिवाजी महाराज है। तो जिस चित्र में वो महाराज की संकल्पना करते है, ये भी क्या है, स्थापना निक्षेप। या मूर्ति बनाई, पहले तो काष्ठ की भी बनाते थे, मूर्तियां भगवान की नहीं, कोई भी राजा की हो या कुछ भी अन्य भी, पुतला बनाते, तो ये हमारे अमुक अमुक महाराज है, हमारे ये राजा है, उसका अर्थ क्या है, ये स्थापना की हमें, ये सामने वस्तु अलग है और जिनकी स्थापना कर रहे वो कोई अलग है। एक वस्तु में दूसरे वस्तु का संकल्प करना, ये है स्थापना निक्षेप। ये भी लौकिक व्यवहार के लिए की जाती है। एक है द्रव्य निक्षेप। अभी द्रव्य निक्षेप का अर्थ बराबर समझना, यानी वही द्रव्य आगे चलकर उसकी पर्याय उत्पन्न होने वाली है कहीं, तो उसको हम आज ही कहेंगे। जैसे हमारे भविष्य के तीर्थंकर कौन है? श्रेणी का राजा तो मनुष्य पर्याय का नाम था, उसके बाद अभी पहले नरक में है और वही जीव चलकर आगे पहले तीर्थंकर होने वाले हैं। क्या नाम होगा उनका?
महापद।
हम क्या कह रहे हैं? भावी तीर्थंकर कौन है? श्रेणी का राजा। द्रव्य तो वही है जो श्रेणी का राजा था, वही अभी पहले नरक में है, समय दृष्टि है, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे, वहां से आके हमारे पहले तीर्थंकर यहाँ भरत भूमि में होने वाले। तो श्रेणी का राजा हमारे पहले तीर्थंकर भविष्य के है, ऐसा कहना क्या है? ये द्रव्य निक्षेप है। द्रव्य की किसी पर्याय पर किसी अन्य पर्याय का आरोप करना वो है द्रव्य निक्षेप। अब भाव निक्षेप में क्या लेना है? वर्तमान की जो है उसी को उसकी कहना वो है, वो कहना तो नहीं में जाएगा परंतु वो वस्तु में रखना है। वर्तमान उसकी पर्याय, जिस पर्याय रूप से वो परिणमित है उसको वो भाव निक्षेप कहेंगे। ये चार निक्षेप है। अब यहाँ कहते हैं नाम आदि निक्षेप से, यानी निक्षेप जो होते हैं वो गेय पदार्थों में रखे जाते हैं और ज्ञान में जो ऐसे भेद हो जाते हैं तो हम उसको नए कहेंगे। उसमें भी लगेंगे नाम नए, स्थापना स्थापना से वो नए से वो जानते हैं, ऐसा कहेंगे उसमें। ये द्रव्य निक्षेप है ना, उसमें हम नैगम नहीं लगाएंगे, भूत नैगम या भविष्य नैगम, यानी वो वही द्रव्य है उसके भूत पर्याय के द्वारा वर्तमान में पहचानना, तो ये भूत नैगम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और उसमें हमने निक्षेप कहा था, द्रव्य निक्षेप कहा था, वो वस्तु में है और नए तो ज्ञान में है। निक्षेप को जानने वाला जो ज्ञान है उसमें वो नए से हम अलग अलग भेद करेंगे। नाम से तथा स्थापना से भी जैन अजैन पात्र, ये हमने ऊपर पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, ऊपर पढ़ेंगे पहले 54 नंबर। नामतः स्थापना तोपि जैन पात्रायते तरम सलभ्यो द्रव्य तो धन्यैर्भावतस्तु महात्मभिः। नाम से तथा स्थापना से भी जैन अजैन पात्रों से विशिष्ट पात्र होता है, यानी जैन अजैन पात्रों से विशिष्ट पात्र होता है। द्रव्य से जैन पुण्यवानों को प्राप्त होता है और भाव से जैन तो महाभागों को ही मिलता है। पुण्यवानों को प्राप्त होता है ना, ये पात्र के रूप में प्राप्त होना ही है। हम वो दान देने के लिए कोई जैन मिले तो कहते महापुण्य से मिलता है, और भाव से जैन है कोई समय दृष्टि है कोई मुनिराज हमें पात्र के रूप में मिलना ये तो महाभाग्य की है। ये बात बताना चाहिए। विशेषण, ये पात्र की बात चल रही ना, यानी नाम से जैन भी विशिष्ट पात्र है जो नाम से जैन है, और यहाँ तो भाव की जैन की बात चल रही है। अजैन उनसे भी विशिष्ट है, नहीं अच्छा है पात्र। अब उसमें भी जो भाव से है वो तो बहुत ही उत्तम है, तो ऐसे योग्य पात्र मिलना दान देने के लिए ये भी महाभाग्य है, पुण्य का उदय, हमारे पुण्य का उदय, ये बताना चाहते हैं। देखो विशेषण, नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद से निक्षेप के चार भेद है। जो मात्र नाम से जैन है उसे नाम जैन कहते हैं, ये जैन पर लगा रहे, ये चार निक्षेप जैन शब्द पर लगा रहे हैं। नाम से जैन है, हमारा सरनेम जैन है, हम जैन कुल में जन्मे तो नाम से जैन है। जिसमें यह जैन है इसी कल्पना कर ली गई है वह स्थापना जैन है। जो आगे जैनत्व गुण की योग्यता से विशिष्ट होने वाला है वह द्रव्य जैन है, क्योंकि वह आगामी उसके जैन पर्याय, यानी वह तो समय दृष्टि बनने वाला है, अभी उसको हम जैन कहेंगे, वो जैनत्व गुण उसमें प्रकट होने वाला है। और जो वर्तमान में जैनत्व गुण से विशिष्ट है वह भाव जैन, यानी वर्तमान में समय दृष्टि है वो भाव जैन कहेंगे उसको। इनमें से सबसे निकृष्ट, निकृष्ट समझते हैं? लोएस्ट, लोएस्ट, उत्कृष्ट है ना, अच्छा, सबसे अच्छा, इसमें सबसे बुरा है, निकृष्ट, उत्कृष्ट से उल्टा अर्थ निकृष्ट। तो कहते हैं इनमें से, ये चार में से बात चल रही है, सबसे निकृष्ट नाम जैन है और स्थापना जैन है, किंतु पात्र की दृष्टि से जैनेतर पात्रों से वे भी श्रेष्ठ है। अन्य पात्रों से, अन्य जैनेतर, अन्य जो अजैन से, ये उनसे ठीक है क्योंकि उस कुल में जन्म है तो कुछ तो संस्कार कुछ तो जो होगा, क्योंकि उनमें जैनत्व का नाम तो है रहे द्रव्य जैन और भाव जैन, वे तो सच्चे पात्र है ही। इसी से कहा है आज के समय में यदि किसी को उपकार करने के लिए ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ये बात है ना महाभागों से मिलता है, ऐसा दान देने के लिए ऐसा कोई मिल जाए जो आगे महान जैन व्रति या ज्ञानी होने वाला हो तो वह व्यक्ति धन्य है, और यदि पात्र मुनि आदि हो तब तो ऐसे पात्र को दान देने वाला महाभाग्यशाली है, ये दान देने वाला भाग्यशाली है कि जिसको ऐसा पात्र मिले। हम तो कहे हम दान दे रहे हम बहुत बड़े हैं, ऐसा नहीं है, दान लेने वाला भाग्यशाली नहीं कहा, देने वाला पात्र को देने वाला महाभाग्यशाली,
भाग्यशाली जब होगा उसको पात्र समय पे मिलेगा।
वही तो वही
ये स्थापना जैन जो कहा ना कल्पना से जैन है, मैंने उसमें एग्जैक्टली भाव नहीं समझ पाया।
आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपके बाजू में कोई बैठा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जैन होगा और उसी के साथ आप जैन जैसा व्यवहार करेंगे, शाम हो जाएगी भोजन खोलेंगे बोले चलो आपके काम, तो आपने उसमें पहले से बिना जाने जैन की स्थापना करी, बोले नहीं साहब मैं तो आप जैसा जैन नहीं हूँ, क्या हो गया स्थापना
या ऐसे भी कोई अन्य मति जैन बनना चाहते तो पहले तो स्थापना से जैन हो गए, उसमें तो कोई गुण तो प्रकट नहीं हुए, तो हम कहेंगे स्थापना जैन
सरदार
वो स्थापना जैन कहेंगे। आगे कहते हैं जो भाव जैन के प्रति निश्चल, निश्चल नहीं कहा निश्चल, छल यानी कपट और कपट रहित प्रीति रखता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 55 प्रतीत जैनत्व गुणेनुरज निर्व्याजम संस्कृति तद्गुणानां दूरी स्फुरन्नाभ्युदयैरदृप्त तृप्त स्त्रीलोकी तिलकत्वमेति। नीचे अभी उसका अर्थ देखेंगे हम, ये 55 पढ़ा ना, नीचे उसका अर्थ जिसका जैनत्व गुण प्रसिद्ध है ऐसे पुरुष में निश्चल अनुराग करने वाला व्यक्ति, जैनत्व गुण प्रसिद्ध है नहीं मुनिराज आदि की बात है, संसार पर्यंत अर्थात भोगों में प्रसिद्ध जैनत्व गुण वाले पुरुषों में अग्रणी होता हुआ सम्यक्त्व सहचारी पुण्योदय के योग से, यानी वो तो समय दृष्टि तो है ही है, उसके साथ साथ होने वाला जो पुण्य बनता रहता है उसका जब उदय होता है पुण्य के उदय के पुण्योदय के योग से, पुण्योदय के निमित्त से पुण्य उसने सम्यक्त्व के साथ तो सहचारी पुण्य बनता है, अब उसका उदय हुआ है उसके निमित्त से सांसारिक भोगों से, यानी उसके निमित्त से जो सांसारिक भोग मिलते उससे भी विरक्त होकर तीनों लोकों के तिलक पने को अर्थात परम पद को प्राप्त करता है। इसका अर्थ सम्यक दृष्टि के पुण्य बनता है उसका उदय होता है उसमें तो उसके लौकिक बहुत सारे भोगों को भोग प्राप्त होते उनका भी त्याग करके वो स्वयं मुनि बन के परमात्मा बन जाता है, ऐसे लेना ना। आगे कहते कि पाक्षिक श्रावक को सबसे प्रथम गृहस्थाचार्य को उसके अभाव में मध्यम पात्र को कन्या आदि देना चाहिए। हाँ आगे पढ़ देंगे निस्तारकोत्तमायाथ मध्यमाय सधर्मणे कन्या भूहेम हस्त्यश्व रथयत्नादि निर्वये निर्वपेत। क्या क्या देना, कन्या भू यानी भूमि, हेम हस्ती अश्व रथ रत्न, अरे वाह वाह, हाँ देखो क्या क्या कहते हैं, छप्पन नंबर ना, संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले गृहस्थों में जो प्रमुख हो, उसके अभाव में मध्यम साधर्मी के लिए कन्या, भूमि, स्वर्ण, हाथी, घोड़ा, रथ, रत्न आदि देना चाहिए। विशेषात कन्यादान भी समदत्ति में आ गया। समदत्ति ने एक श्रावक दूसरे श्रावक को जो दान देता है उसमें ये इसको ले लिया, कन्या को दान में ले लिया। पहले जो कहा था कि नाम और स्थापना से तो जैन है वह भी पात्र है और उसे भी दान देना चाहिए, वह जघन्य समदत्ति का कथन है और यह मध्यम समदत्ति का कथन है। क्योंकि यदि गृहस्थ साधु की अपेक्षा गुणों में अधिक भी हो तब भी मध्यम पात्र ही होता है, उसे ही कन्या देना चाहिए। कन्या दान के योग्य वही पात्र होता है जो अपना सधर्मा हो, अर्थात जिसका धर्म, क्रिया, मंत्र, व्रत वगैरह अपने समान हो। आगे सधर्मा को ही कन्या क्यों देनी चाहिए उसका कारण कहते हैं ऊपर 57 नंबर, आधानादिक्रिया मंत्र व्रताद्यच्छेद वांछया प्रदेयानि सधर्मेभ्य कन्यादीनि यथोचितम्। गर्भाधान आदि क्रियाएं, आधान आदि क्रिया का ना, उन क्रियाओं संबंधी मंत्र अथवा पंच नमस्कार मंत्र और मध्य आदि के त्याग रूप व्रतों को सदा बनाए रखने की इच्छा से यथा योग्य कन्या आदि साधर्मी को देना चाहिए। विशेषार्थ जैन धर्म की धार्मिक क्रियाएं जिनका वर्णन महापुराण के 38-39 आदि पर्वों में भगवत जिनसेनाचार्य ने किया है तथा उनके मंत्र और पंच नमस्कार मंत्र, व्रत नियम आदि अन्य धर्मों से भिन्न है। यदि लड़की अजैन कुल में जाती हो तो उसके व्रत नियम, देव पूजा, पात्र दान सब छूट जाते हैं, इस तरह से उसका धर्म ही छूट जाता है। इसलिए कन्या साधर्मी को ही देनी चाहिए। धर्म के सामने संसार का ऐश्वर्य तुच्छ है, धर्म के रहने से वह भी मिल जाता है और धर्म के अभाव में प्राप्त भोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसी से चारित्र सार में भी समदत्ति का स्वरूप बतलाते हुए अपने समान धर्म कर्म वाले मित्र को जो उत्तम गृहस्थ हो कन्या, भूमि, स्वर्ण, हाथी, रत्न आदि देने का विधान किया है। यदि अपने समान न मिले तो मध्यम पात्र को भी देने का विधान किया है, किंतु विधर्मी या अधर्मी को देने का विधान नहीं किया। आगे कन्यादान की विधि और उसका फल कहते हैं। अभी इसमें समझाने जैसे कोई बात नहीं, सरल है। 58 नंबर ऊपर, निर्दोषां सुनिमित्त सूचित शिवां कन्यां वराहैर् गुणैर् स्फुरजन्तं परिणाय धर्म विधिना यस्सत्करोत्यञ्जसा दंपत्यो सतयोस्ति वर्ग घटना त्रैवर्गिकेश्व प्रग्रणी भूत्वा तत्सत्समयास्तमोह महिमा कार्ये परे प्युर्यति। जो गृहस्थ सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए दोषों से रहित। ये सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है, सुना है कभी? जिसे चेहरे के या अंगों को देखकर उसके विशिष्ट फल बताते हैं, जैसे उसका मस्तक कैसा है, फेस रीडिंग, तभी हम कहते हैं उसका एक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। पूरे हाथ पैर पूरे शरीर की रचना के अनुसार उसका फल बताने वाला वो सामुद्रिक शास्त्र होता है। जानू यानी नी जॉइंट, अजानू यानी जानू तक, यानी नी जॉइंट तक बड़े हाथ, ऐसे लंबे हाथ, यानी वो एक
अच्छा
शरीर के जो विशिष्ट जो अंगों के बताए हैं उसका शेप कैसा है, क्या है, उसके फल बताए अलग अलग। अभी अन्य मतियों में भी वो बताते हैं नाखून कैसे हाथ कैसे, उसके अनुसार भी वो तो जैसे जो इसकी मेंटालिटी कैसे, जो अपराधी वगैरह होते हैं उनके अलग टाइप के हाथ नाखून वगैरह होते हैं। तो ऐसा एक सामुद्रिक शास्त्र है। तो कहते हैं उसमें जो कुछ दोष बताए है उन दोषों को टालकर, तो जो गृहस्थ सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए दोषों से रहित तथा भावी शुभाशुभ को जानने के उपायों के द्वारा ज्योतिर्विदों ने जिसका सौभाग्य सूचित किया कर दिया है, उस कन्या को वर के योग्य कुलशील परिवार विद्या संपत्ति सौरूप्य योग्य वय आदि गुणों से विचारशील मनुष्यों के चित्त में जचने वाले वर के साथ धार्मिक विधि से विवाह करके, पहले में पहले किया कन्या कैसी है तो ये तो सामुद्रिक शास्त्र में कहे गए दोषों से रहित है और वो ज्योतिर्विदों ने जिसका सौभाग्य सूचित किया है, ऐसे कन्या को योग्य वर के साथ, वो वर में क्या क्या देखना वो भी बात बता दी, धार्मिक विधि से विवाह करके श्रद्धा पूर्वक साधर्मी का सत्कार करता है, वह गृहस्थ अपनी कन्या और उसके वर के धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ के संपादन करने से धर्म अर्थ और काम का पालन करने वाले गृहस्थों में मुखिया होकर जिनागम अथवा आर्य पुरुषों की संगति से चारित्र मुनि कर्म की गुरुता दूर होने पर पारलौकिक कार्य में भी समर्थ होता है। कुछ नहीं, उसके जो लौकिक, उसके जो जिसको कहेंगे अपनी कन्या का विवाह करना, ये जो लौकिक एक कार्य है उसके लिए बताया।
ये जो कुंडली शास्त्र है ये सामुद्रिक शास्त्र नहीं,
सामुद्रिक कुंडली शास्त्र है वो तो ज्योतिर्शास्त्र है, सामुद्रिक तो वो बस फेस रीडिंग जैसा होता है, उसके विशिष्ट विशेषण। भारतीय धर्म में गृहस्थाश्रम का बहुत महत्व है। आचार्य पद्मनंदी ने कहा है इस कलिकाल में जिनालय मुनि धर्म और दान इन सब का मूल कारण श्रावक है, श्रावक न हो तो इनमें से कोई भी रक्षित नहीं रह सकता, अतः इन सबकी स्थिति तभी तक है जब तक श्रावक और श्राविकाओं में धार्मिक प्रेम है। इसी से विवाह संबंध साधर्मियों में ही करने पर जोर दिया है। भारत में विवाहिता को केवल पत्नी नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं, क्योंकि वह पति के धर्म की भी सहचारिणी होती है। पत्नी के योग्य होने पर ही पति का भी योगक्षेम चलता है और धर्म साधन होता है, अतः वैवाहिक संबंध बहुत सोच समझकर किया जाता है। सबसे प्रथम कन्या का कुल शील सौभाग्य आदि देखा जाता है, इसी तरह कन्या पक्ष की ओर से वर के गुण देखे जाते हैं, तब विवाह होता है। अब कन्या निर्दोष होना चाहिए, ये कहां से लिया उन्होंने, ये सब मेरे ख्याल से अन्य मतियों में से कहां कहां दिया, यानी इसमें धर्म की कोई बात नहीं, मनुस्मृति वगैरह अन्य नीति शतक उसमें से लिए है, चलो पढ़ लेते हैं। यानी इसे वो धार्मिक से कुछ संबंध नहीं लगता है, ये पढ़ के ऐसा कुछ अटपटा लगता है। हाँ हम पढ़ेंगे फिर भी, हाँ लिखा है तो पढ़ेंगे। कन्या निर्दोष होना चाहिए, आंख की पुतलियों का उठा होना, जंघाओं पर रोम होना, उरों का मांस विहीन होना, कटी नाभि उदर और कुछ युगल का सुंदर न होना, बाहुओं पर नसों का उभार तथा उनका आकार सुंदर न होना, तालू जीभ और ऊपरों पर कालापन होना, दांतों का विरल और टेढ़े मेढ़े होना, कपालों की हड्डी का उठा होना, कपाल यानी कपाल, कपाल क्या कपोल कहाँ है, कपोल ये हड्डी आंख के नीचे की हड्डी, हाँ, आंखों में पीलापना, भौहों का जुड़ा होना, मस्तक का उठा होना, कानों की रचना खराब होना, केशों का स्थूल कठोर और पीला होना, अति लंबी अति लघु होना, अंगों का कुबड़ा बौना आदि होना दोष है, इत्यादि दोषों से रहित कन्या होना चाहिए। कहा है वेश्या को स्वीकार करना उत्तम है किंतु अविशुद्ध कन्या का ग्रहण उत्तम नहीं है। जो कन्या रोगी हो, अल्पायु हो, अप्रसन्न रहती हो, उल्टा हो, लड़ाकू हो, अभागिनी हो, देखने में अप्रिय हो, उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिए। वह कुलीन और सुशील होना चाहिए। कहा है कुलशील सनातता, विद्या, धन, शरीर और आयु, इन सात गुणों की परीक्षा करके ही कन्या देना चाहिए। सबसे प्रथम कुल को स्थान दिया है कि अकुलीन को कन्या कभी भी नहीं देना, इसको देना है उसकी बात। कहा है कन्या का मरना उत्तम है किंतु अकुलीन को कन्या देना उत्तम नहीं है। विवाह के चार प्रकार कहे हैं, ब्राह्म, प्राजापत्य, आर्ष और दैव। ये तो अन्य मतियों, यानी ये जो जनरल बात कर रहे हैं, इनके अतिरिक्त गांधर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच विवाह अधर्म्य है। इनका लक्षण इस प्रकार है, कन्या को अलंकृत करके वर को देना कि तू इस भाग्यशाली की धर्मपत्नी हो, ब्राह्म विवाह है। बदले में कन्या देना प्राजापत्य विवाह है, बदले में ने पैसा लेकर कन्या देना। गौ, भूमि, सुवर्ण दान पूर्वक कन्या देना आर्ष विवाह है, जिसमें यज्ञ के पुरुष पुरोहित को यज्ञ कराने की दक्षिणा के रूप में कन्या दी जाती है, वह दैव विवाह है। माता पिता बंधु बांधवों की अनुमति के बिना परस्पर के अनुराग से जो विवाह किया जाता है वह गांधर्व है, बीच में कुछ छूट गया है, वह आसुर विवाह है। सोती हुई या बेहोश कन्या को उठा ले जाना पैशाच विवाह है। जबरदस्ती कन्या को ले जाना राक्षस विवाह है। ये चारों विवाह अधर्म होने पर भी यदि वधु और वर में परस्पर में अपवाद रहित भव्यता है तो अधर्म नहीं है। मनु ने कहा है, ये सब मनुस्मृति की बातें हैं, अपने में ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच आठ भेद है। श्रुति और शील से संपन्न वर को स्वयं आमंत्रित करके पूजा पूर्वक कन्यादान ब्राह्म विवाह है। यज्ञ में पधारे ऋत्विज को जो यज्ञ कर्म करता है अलंकृत करके कन्या देना दैव विवाह है। वर से एक या दो गो मिथुन लेकर विधिवत कन्या देना आर्ष विवाह है। दोनों मिलकर धर्म का पालन करना ऐसा कहकर कन्या देना प्राजापत्य विवाह है। ये चारों विवाह धर्म है। कुटुंबियों को कन्या के लिए धन देकर बलपूर्वक कन्यादान आसुर है। कन्या और वर का परस्पर की इच्छा से संबंध करना गांधर्व विवाह है। यह विवाह कामज है। रोती चिल्लाती हुई कन्या को बलपूर्वक हरण करना राक्षस विवाह है। सोती हुई या पागल या बेहोश कन्या के पास एकांत में जाना सब विवाहों में निकृष्ट पैशाच विवाह है। इनमें से ब्राह्म आदि चार विवाहों में ही ब्रह्मविद तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे रूप सत्व आदि गुणों से युक्त धनवान यशस्वी और धार्मिक होते हैं तथा 100 वर्ष तक जीते हैं। अन्य दुर्विवाहों में ब्रह्म और धर्म के द्वेषी असत्यवादी क्रूर पुत्र उत्पन्न होते हैं। अनिंदित स्त्री विवाहों से अनिंद्य संतान उत्पन्न होती है और निंदित से निंदित, इसलिए मनुष्यों को निंदित विवाह नहीं करना चाहिए। ये आगे का पैराग्राफ बड़ा है, यही रुकना पड़ेगा, बाकी बातें चल। जावानी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सोवानी मस्तक नम।